ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक संख्या 8, सॉरी स्कंद 8, अध्याय 7 और श्लोक संख्या 46, जिसका आज हम समझने का जिसको प्रयास करेंगे। मेरे पीछे पीछे आप लोग बोलिए। प्रस्कन्नं पिबता पाणे यत्किंचित् जगृह समातत् वृश्चिक अहि विश्वोषध्या दंदशोकाचर्यया परे। मेरे पीछे पीछे बोलिए। प्रस्कनम, इधर उधर फैला हुआ, पीबता शिवजी द्वारा पीते समय, पाणे हथेली से, या जो किंचे थोड़ा सा, जगरूह पी लेने का अवसर, स्मा निसंदेह तब वह वृश्चिक भिक्षु अहि सर्प विष औषधया विषैली दवाएं दंड शोका आपकी जगह दंड शोका च तथा वे जानवर जिनका दंश विषैला होता है, ये जो अपरे अन्य जीव। इसका शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य दिया गया है जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तो हम आज का अनुवाद पढ़े, इससे पहले मैं श्लोक संख्या 45 का अनुवाद पढ़ूंगा क्योंकि उसमें तात्पर्य नहीं दिया गया है, तो आप इसी के कृपया कर सुने ध्यान पूर्वक। इस कार्य को सुनकर भवानी दक्ष कन्या ब्रह्मा विष्णु समेत सामान्य लोगों ने देवताओं द्वारा पूजित और लोगों को वरदान देने वाले शिव जी के इस कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा करी। और अब आज का अनुवाद है, कृपया कर मेरे पीछे पीछे दोहराए। जब शिव जी विश्वास कर रहे थे उस समय उनके हाथ से जो थोड़ा सा विष गिरकर छितर गया उसे बिच्छू सर्प विषैली औषधियां तथा अन्य पशु जिनका दंश विषैला होता है पी गए। तात्पर्य कृपया कर सुनिए। मच्छर सियार कुत्ते तथा अन्य काटने वाले पशु या विभिन्न प्रकार के दंत शूक जिनका दंश विषैला होता है समुद्र मंथन से प्राप्त विष को पी गए क्योंकि उतना शिवजी की हथेली से नीचे गिर गया था। ओम अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साकृजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सञ्जीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामी हरि प्रिय वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज की प्रातःकालीन भागवत गीता कक्षा में, इससे सॉरी भागवतम कक्षा में। आज मैं इससे पहले कुछ बोलूं, कुछ प्रारंभ करूं, तो मैं सभी वैष्णवों से आशीर्वाद चाहूंगा ताकि मैं इस विषय पर कुछ बोल सकूं, विशेष रूप से हिस्क्रेस राम राघव भाई से, हिस्क्रेस रुक्मणि कृष्ण भाई जी से, अन्य सभी वैष्णवों से, क्योंकि जो भी मैं कुछ सीखा कृष्ण भावनामृत में आकर वो सभी आप सब वैष्णवों की वजह से है। और आज मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है मैं कुछ बोल सकूं, तो मेरा कोशिश यही रहेगा जो मैंने आप सबसे सीखा उसको दोहरा सकूं। और एक प्रकार से देखें तो ये मेरी धृष्टता है कि आप लोगों से सीखा और जिनसे सीखा जुनी के आगे मुझे बोलने का ये अवसर मिल रहा है, मैं इस लायक नहीं हूँ। तो फिर भी आप सबकी प्रसन्नता के लिए और अपने शुद्धिकरण के लिए मैं इस विषय पर कुछ कहने का प्रयास करूँगा। और यदि मुझसे कुछ अगर गलती भी हो जाती है तो कृपया करके मुझे आप क्षमा कर दीजिएगा। तो हम देखते हैं कि प्रसंग चल रहा है ऐसा, जो भागवतम में कई बार इस प्रकार के प्रसंग चले हैं जहाँ पर देवता बार बार कठिनाइयों में आते हैं और फिर भगवान की शरण लेते हैं। तो इस बार भी ये जो प्रसंग है कुछ इसी प्रकार से शुरू होता है कि देवता फिर से कठिनाई में हैं और भगवान की शरण ले रहे हैं। और इस पूरे प्रसंग में हम देखते हैं कि जो शिवजी हैं किस प्रकार से उनकी प्रमुखता निकल कर आती है और किस प्रकार से ये पूरा प्रसंग जो है शिवजी को समर्पित होता है। किस कारण से? क्योंकि उन्होंने विषपान किया और इस कारण नीलकंठ भी कहलाए। तो मैं बात वहीं से शुरू करूंगा जहां कल प्रेमानंद प्रभु शुरू कर रहे थे, उन्होंने क्रेडिट से लिया था, तो मैंने कहा था मेरा विषय है, मैं भी क्रेडिट से ही शुरू करूंगा। किस प्रकार से जो भगवान है वो अपने सभी भक्तों का गुणगान करते हैं, उनको कीर्ति देते हैं, उनको यश देते हैं। और जबकि हम देखें संपूर्ण लीला के सूत्रधार वे स्वयं हैं, जैसे श्लोक संख्या 45 में बताते हैं कि इस कार्य को सुनकर भवानी ब्रह्मा विष्णु समेत सामान्य लोगों ने देवताओं द्वारा पूजित और लोगों को वरदान देने वाले शिव जी के इस कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा करी। तो स्वयं भगवान विष्णु जिनका प्रारंभ मध्य और अंत में इस संपूर्ण जो भी लीला हो रही है उनके बिना नहीं हो सकती, उनका हर स्टेप पर हम देखते हैं योगदान है। और उसके बावजूद भी वे इतने निष्काम हैं और किसी प्रकार की स्वयं के लिए यश की इच्छा नहीं करते। तो मैं जस्ट देख रहा था किस किस प्रकार से उन्होंने इस लीला में योगदान दिया, किस प्रकार से उन्होंने इसका पूरा रचना करी ताकि अपने भक्त का गुणगान कर सके। सबसे पहले इसलिए उन्होंने देवताओं को बताया कि आप इस समय विपत्ति में हैं तो आपको इस प्रकार से मैंने जो योजना बनाई है आपको उसके अकॉर्डिंगली कार्य करना होगा। और उसके पश्चात देवताओं ने स्वयं कार्य किया और फिर असुरों के पास गए, असुरों का भी इस कार्य को करने में जो सागर मंथन की लीला है उनका होना भी बहुत जरूरी था, तो उनको भी शामिल किया। तो इसके लिए सबसे प्रारंभ में क्या आवश्यकता थी? मंदर पर्वत की आवश्यकता थी। तो मंदर पर्वत यद्यपि देवता और दानव जो है दोनों ही बहुत शक्तिशाली थे लेकिन कोई भी अपने सामर्थ्य से उठा नहीं पा रहा था। यहां तक उन्होंने प्रयास किया और कुछ दूरी तक ले भी गए किंतु क्या हुआ, ये जो पर्वत था पूरा सोने का था और इसके बाहर से वो कितने देवता और असुर जो है मर गए। तो उनको लगा कार्य का प्रारंभ इस प्रकार से हुआ है तो आगे क्या आशा की जा सकती है। किंतु भगवान विष्णु जो है बहुत दयालु हैं, उन्होंने क्या किया, मंदर पर्वत खुद गरुड़ के ऊपर बैठ के आए और मंदर पर्वत को भी गरुड़ के ऊपर रखा, खुद भी बैठे और सभी देवताओं को जो जिन्होंने शरीर छोड़ दिया था अपनी कृपा दृष्टि डाली, वो फिर से जीवित हो गए और पुणे जहां सागर मंथन में इसकी जरूरत थी मंदर पर्वत को जिस स्थान पर रखने की वहां रखा। इसके पश्चात क्या हुआ, अब मंदर पर्वत को रख दिया गया किंतु इसके लिए जो बेस चाहिए था वो नहीं था, जिस कारण क्या था, मंदर पर्वत बार बार डूब रहा था। तो भगवान विष्णु खुद एक विशाल कुरम का उन्होंने उतार लिया और इस मंदर पर्वत को अपने ऊपर धारण किया। इसके पश्चात क्या हुआ कि नीचे से सपोर्ट मिल गया, अब ऊपर मंदर पर्वत का जो भार है उसको बैलेंस की आवश्यकता थी, तो खुद ऊपर भगवान विष्णु अपने अवतार के रूप में बैठे। भागवत में बताया गया है कि ये इस प्रकार से था जैसे कि एक पर्वत दूसरे पर्वत को जो है सपोर्ट दे रहा। इसके पश्चात क्या हुआ, ये कार्य शुरू हो गया किंतु बहुत जल्दी जो है देवता असुर और वसुकी जिनको रस्सी के रूप में सांप जो थे उनको इस्तेमाल किया गया, वो सभी थकने लगे। तो अलग अलग देवताओं को देखते हैं हम, असुरों को देखते हैं और सर्प को देखते हैं, अलग अलग गुणों के द्वारा संचालित है, सबकी जो चार्जिंग थे वो चार्जिंग कैपेसिटी थी सबकी खत्म हो गई थी और बिल्कुल हताश हो गए थे। तो भगवान ने क्या किया, अपना विस्तार किया। देवता सतोगुण में रहते हैं उनको सतोगुण के से चार्ज किया, असुर जो है तमोगुण के द्वारा संचालित होते हैं तो उनको तमोगुण दिया, समझ लीजिएगा रजोगुण दिया, और जो वासुकी हैं उनको तमोगुण की आवश्यकता होती है तो उनको तमोगुण दिया। तो इस प्रकार से ये चरणिंग का जो पास्ट टाइम है ये लीला फिर से शुरू हुई। और इसमें आगे देखते हैं कि वासुकी बहुत थक गए क्योंकि एक तरफ से देवता उनको खींच रहे हैं, दूसरी तरफ से असुर उनको खींच रहे हैं, तो दोनों प्रकार से डबल डबल वो खींचे जा रहे हैं, तो उनकी हालत कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा बुरी थी। तो भगवान ने क्या करा, अपनी उनके ऊपर कृपा करी जिससे वो फिर से उनमें संचार हुआ प्राण शक्ति का, और फिर से वो भी उनका जो तमोगुण बढ़ाया, क्योंकि तमोगुण का प्रभाव होता है व्यक्ति को सुख या दुख पता नहीं लगता। तो इस जैसे हम एक शराबी व्यक्ति को देखते हैं उसको पता नहीं लगता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो उनके तमोगुण की मात्रा इतनी बढ़ा दी गई कि उनको पता नहीं लग रहा था, और वो भी जो उनकी सेवा थी उसको अच्छे से कर रहे थे। तो आगे करते हुए क्या हुआ कि जो देवता हैं उनके पास भगवान का जो सर्प वाला पक्ष है, वासुकी का सर्प वाला, उस तरफ से वो खींच रहे थे, तो बिल्कुल वो हताश हो गए क्योंकि जो वासुकी है बार बार अपना विषैला धुआं निकाल रहे थे, अग्नि निकाल रहे थे तो उनके ऊपर पड़ रहा था। तो देवता है बिल्कुल काले हो गए थे, उनकी अंग कांति जो है बिल्कुल धीमी पड़ गई थी। तो भगवान ने क्या किया, ऊपर से वर्षा करी और जो मधुर हवा है उसको चलाया ताकि देवताओं को कुछ साधना मिल सके इससे। इसके पश्चात फिर जो है चरणिंग कार्य शुरू हुआ उससे, और इसके बाद आगे चलते हुए ऐसा भी हुआ कि देवता और असुर दोनों फिर से थक गए, उनको लगा कि अब कोई आशा नहीं है। तो भगवान खुद स्वयं आए, उन्होंने खुद भागवत में लिखा कि खुद भगवान ने जो सागर मंथन है इसको, चरणिंग की जो लीला है इसको फिर से शुरू किया। और फिर इसमें से हम देखते हैं सबसे पहले क्या निकला, विष। तो भगवान स्वयं सारी जो इस लीला है इसको रच रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं, लेकिन उन्हें विष के लिए जैसे ही बात आई तो शिवजी सबसे पहले आए। तो हम देखते हैं कि भगवान अपने भक्तों का कितना गुणगान करते हैं, अपने भक्तों की कितनी प्रशंसा करते हैं। तो ये भगवान का गुण है कि वे सब कुछ करते हुए भी अब जो है गुणगान या जो कीर्ति है अपने भक्तों को देते हैं। इसी प्रकार से एक अन्य पास टाइम हम देखते हैं वही भगवान शिव के लिए था, इसमें भगवान शिव का नाम, जिस कारण भगवान शिव जो है वो त्रिपुरारी कहलाए। इसमें भी यही निष्कर्ष निकलता है कि भगवान विष्णु ने स्वयं प्रत्येक कार्य किया लेकिन उन्होंने यश किनको दिया, भगवान शिव को। उदाहरण के लिए ये इस जो कथा दी गई है भागवतम के सातवें स्कंद के दसवें अध्याय से कथा शुरू होती है। इस कथा का प्रारंभ सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार से करते हैं कि जो असुर था मय दानव, उसने प्रारंभ से ठान लिया कि वो जो शिवजी की कीर्ति है उस पर वो बट्टा लगाकर रहेगा। शुक्र गोस्वामी इस प्रकार से शुरू करते हैं। और तो उसमें क्या हुआ, भगवान कृष्ण की शक्ति के द्वारा देवता जो हैं अत्यंत शक्तिशाली हुए और उन्होंने असुरों से युद्ध किया और वो उस पर विजय प्राप्त करी। असुर जो है बहुत कमजोर हो गए थे इस कारण वे मय दानव की शरण में गए। मय दानव ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए विशेष प्रकार के महलों की रचना करूंगा। ये क्या होंगे? आपके लिए पैलेस कम फाइटर जेट्स होंगे, यानी कि आप इसमें रह भी सकेंगे और युद्ध का भी कार्य कर सकेंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक चांदी से और एक सोने से और एक लोहे से तीन प्रकार के महलों की रचना करी, इनको पुर बोला जाता है, और साथ ही साथ में ये महल के साथ साथ एक लड़ाकू विमान की तरह कार्य करते थे। इससे क्या हुआ, असुरों ने पुनः शक्ति प्राप्त करी और उन तीन विमानों को लेके मध्य लोग, ऊर्ध्व लोग और जो नीचे के लोग हैं तीनों पर धावा बोल दिया। तो इतने शक्तिशाली विमान थे, देवता इनसे पराजित होने लगे। वो पुनः अब की बार शिव जी की शरण में गए। शिव जी ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी रक्षा करूंगा। तो बताया जाता है शिव जी ने सूर्य मंडल की आभा से चमकता हुआ अपना विशेष अस्त्र निकाला और उसको इन तीनों जो पुर थे के ऊपर छोड़ दिया। उसके पश्चात क्या हुआ, उसकी जो किरण थी, उसकी आभा थी, उससे तीनों के तीनों विमान कवर हो गए और उसके पश्चात जितने असुर थे वो निष्प्राण होकर गिरने लगे। मय दानव ने देखा कि जिस विमान की मैंने रचना करी है असुर जो है फिर से पराजित हो रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक कुंड की रचना करी। ये कुंड अमृत से बना हुआ था। तो जितने भी असुर मर रहे थे तो उन्होंने क्या किया कि फिर से मय दानव ने उन असुरों को उस अमृत कुंड में डाला। उस कारण जितने असुर हैं फिर से जीवित होने लग गए और अब की बार वो पहले से अधिक शक्तिशाली हो गए। बताया जाता है कि इस बार उनका जो शरीर था वज्र की तरह बिल्कुल सुडौल था और किसी भी प्रहार का उनके ऊपर असर नहीं हो रहा था। शिवजी को जब इस बारे में पता चला तो बहुत ही ज्यादा वो खिन्न और उदास हो गए। उन्होंने कहा, मैंने अपनी तरफ से इतना प्रयास किया और उसके बावजूद असुर फिर से शक्तिशाली हो रहे हैं और फिर से वे उन्हें देवताओं को पराजित कर रहे हैं, तो बिल्कुल उदास हो गए। क्योंकि भगवान विष्णु हम देखते हैं जन जन के हृदय में रहने वाले परमात्मा है, प्रत्येक जीव की चेष्टाओं को, उसके विचारों को जानते हैं। तो भगवान कृष्ण अपने भक्त की ऐसी स्थिति देखकर उनसे रहा नहीं गया, वो पुनः भगवान शिव के पास गए और उनसे उन्होंने कुछ वचन कहे। ये सातवें स्कंद के दसवें अध्याय के 65वें श्लोक से शुरू होते हैं। ये जो भगवान कृष्ण ने कहा बड़ा ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, तत्पश्चात कृष्ण ने शिव जी को अपनी निजी शक्ति से जो धर्म, ज्ञान, त्याग, ऐश्वर्य, तपस्या, विद्या तथा कर्म से युक्त थी, सभी प्रकार की साज सामग्री से यथा रथ, सारथी, ध्वज, घोड़े, हाथी, धनुष, डाल, बाण से संयुक्त कर दिया। इस तरह से संयुक्त होकर शिव जी अपने धनुष बाण द्वारा असुरों से लड़ने के लिए रथ पर आसीन हुए। उसके पश्चात परम शक्तिशाली शिव जी ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और दोपहर के समय असुरों के तीनों आवासों में अग्नि लगाकर उन्हें नष्ट कर दिया। तब अपने अपने विमानों में आसीन उच्च लोगों के निवासियों ने दुमदुमियां बजाई। देवताओं, पितरों, सिद्धों तथा विविध महापुरुषों ने शिव जी के ऊपर पुष्प वर्षा की और जय जयकार की। अप्सराएं परम प्रमोदित होकर नाचने गाने लगी। हे राजा युधिष्ठिर, इस प्रकार शिवजी त्रिपुरारी कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने असुरों की तीनों पुरियों को भस्म कर दिया था। ब्रह्मा समेत समस्त देवताओं से पूजित होकर शिवजी अपने धाम लौट गए। तो देखते हैं कि भगवान शिव त्रिपुरारी कहलाए, लेकिन इस त्रिपुरारी को कहने का कारण कौन है, उनके कहलाने का कारण कौन है, भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण प्रत्येक जीव हर एक को यश देना चाहते हैं। कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसको भगवान यश ना देना चाहे, पर अपने भक्तों पर वे विशेष रूप से कृपालु होते हैं। तो हम देखते हैं भगवान कृष्ण ने किस किस प्रकार से समस्त जीवों को यश दिया है और शिला प्रभुपाद इस बारे में बताते हैं श्लोक भगवद गीता के श्लोक संख्या 11.34 में कि प्रत्येक जो योजना है वो परम भगवान द्वारा बनाई जाती है, किंतु वे अपने भक्तों पर इतने दयालु होते हैं कि वो सारा का सारा श्रेय उन्हें दिए जाते हैं जो उनकी इच्छा के अनुसार उनकी योजना को क्रियान्वित करते हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण का गुण है। और जैसे मैं बता रहा हूँ कि किसी भी जीव को वे यश देना चाहते हैं, कीर्ति देना चाहते हैं। उनके लिए पशु हो, पक्षी हो, कोई भी क्यों ना हो, सब उनकी संतानें हैं। किंतु जो भी उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करता है, या भौतिक जगत में भी अगर कोई जीव उनके इच्छा अनुसार नहीं कार्य करता किंतु वो त्याग करता है तब भी भगवान कृष्ण उनको श्रेय देते हैं। तो सबसे पहले मैं भक्तों के बारे में बताना चाहूँ किस प्रकार से भगवान कृष्ण अपने भक्तों को श्रेय देते हैं। उदाहरण के लिए जटायु, जटायु पक्षी की योनि में थे किंतु उन्होंने सीता माता को बचाने के लिए अपने प्राण पीछे देने से भी वो नहीं हटे और इस कारण भगवान ने क्या किया उनको अपने पिता का दर्जा दिया। इसके पश्चात पूतना, पूतना उनका वध करने के लिए आई थी और उन्होंने क्या किया क्योंकि वो उनको अपना दूध पिला रही थी तो उन्होंने धात्री का दर्जा दिया कि ये मेरी माता के समान है। और यहां तो देखें कि इतने हम असुर हैं या इस प्रकार से भगवान के भक्त हैं, एक छोटे से छोटे जीव को भी भगवान यश देते हैं अगर वो उनकी कुछ सेवा करते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि कार्तिक में हम एक चूहे की कथा पढ़ते हैं जिसने अनजाने में भगवान को जो घी लगा हुआ था दीपक उसको खा लिया था और उसकी गर्मी से वो उछल रहा था। तो भगवान ने क्या किया उस चूहे के उछलने को भी अपनी ऑफरिंग के लैम्प के रूप में स्वीकार करा। तो हम देखें चूहा कितना एक इनसिग्निफिकेंट हमें जीव लगता है पर भगवान ने उसका कितना यशगान किया। हमें नहीं पता वो कौन है कौन नहीं है, कौन जीवात्मा है, क्या उसका इतिहास है, पर भगवान ने उसकी सेवा को स्वीकार किया। और हम कार्तिक में उनकी महिमा में पढ़ते हैं कि इस प्रकार से एक चूहा था जिसको भगवान ने अपनी सेवा का दर्जा दिया। गिलहरी, ये गिलहरी बड़ी विशेष गिलहरी है, इसका वर्णन मिलता है हमें सागर बांधने के समय भगवान राम जब इस पृथ्वी पर लीला कर रहे थे। तो सभी हम जानते हैं कि यहां से भारत के इस कोने से श्रीलंका पर पुल बनाया जा रहा था तो सभी महान जितने पराक्रमी हैं वानर सेना में बलशाली हैं अंगद हनुमान जामवंत पनस गवय ये सारे मैं द्रिविद इतने बलशाली इतने शिला के समान पहाड़ों के समान बड़े बड़े पत्थरों को लाकर रख रहे हैं। तो हनुमान ने देखा कि गिलहरी बार बार बीच में आ रही है और इस प्रकार से उनको कुछ असुविधा हो रही थी, उन्होंने बोला गिलहरी आप मेरे मार्ग से हट जाइए। किंतु भगवान राम से नहीं सह गया, इस बात को नहीं सहा गया। उन्होंने भगवान उन्होंने हनुमान को बोला कि जिस प्रकार से आप मुझे प्रिय हो, आपकी सेवा मुझे प्रिय है, उसी प्रकार से गिलहरी मुझे प्रिय है। आपकी क्षमता इतनी अधिक है कि आप पहाड़ों को उठा सकते हैं, इस गिलहरी की क्षमता एक छोटा कंकर उठा सकती है। तो भगवान किसी भी जीव को यश देने से पीछे नहीं हटते, पर इस बात में महत्व क्या होता है कि जीवात्मा जो उसके पास स्वल्प स्वतंत्रता है उसका सदुपयोग करे भगवान की इच्छा के अनुसार। और इस प्रकार से हम देखते हैं वानर सेना, ये वानर सेना इसकी संख्या बहुत बड़ी है। मैं सोच रहा था कैसे इसको बताऊं तो फिर मैंने इसको लिखा। इस विषय में एक बात आती है कि रावण ने जब देखा कि उसके ऊपर वानर सेना ने आक्रमण कर दिया है तो कैसे उन्हें शत्रु पक्ष की स्थिति को जानना चाहा कि क्या उनकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि आपको अपनी तैयारी करनी है तो आपको शत्रु पक्ष की स्थिति के बारे में पता होना चाहिए। तो उन्होंने शुक को बुलाया जो उनका असुर था मंत्री था और उससे पूछा कि क्या स्थिति है, कितनी इनकी स्ट्रेंथ है, क्या आर्म्स एमुनिशन है। तो उसने बताया कि मैं आपको इनकी स्थिति बताऊं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इनकी संख्या क्या है, और इनकी संख्या बताने के लिए मुझे आपको थोड़ा गिनती बतानी पड़ेगी क्योंकि ऐसी गिनती अभी तक मैंने कभी नहीं सुनी। तो वानर सेना की स्ट्रेंथ क्या थी, रामायण में बताया गया है कि 100,000 मिलकर 100,000 बनता है और 100,000 मिलकर 1,00,00,000 बनते हैं, 100,000,00,000 मिलकर 1 शंकु बनता है, 100,000 शंकु मिलकर 1 महाशंकु बनता है, 100,000 महाशंकु मिलकर 1 वृंद बनता है, 100,000 वृंद मिलकर 1 पद्म बनता है, 100,000 पद्म मिलकर 1 महापद्म बनता है, 100,000 महापद्म बनकर 1 खरब बनता है, 100,000 खरब बनकर 1 महाखरब बनता है और 100,000 महाखरब बनकर 1 सागर बनता है, 100,000 सागर बनकर 1 ओग बनता है, 100,000 ओग मिलकर 1 महाओग बनता है और कम से कम 100 करोड़ महाओग जो वानर सैनिक है ये भगवान राम की सेना में। मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसके पीछे बड़ा विशेष योजना है कि किस प्रकार से इन 100 करोड़ महाओग जो वानर सैनिक है भगवान ने सबका कैसे गुणगान किया, ये बहुत विशेष बात है। तो इस प्रकार से इतनी भारी भरकम जो क्षमता है इन्होंने वानर सेना ने युद्ध किया और क्या हुआ युद्ध के परिणाम देखते हैं कि कुछ वानर बचे और बहुत से ऐसे भी वानर थे जिनका असुरों के द्वारा भक्षण कर लिया गया क्योंकि मेघनाथ और अन्य असुर विरूपाक्ष महोदर इस प्रकार के असुर थे, इनको लड़ने में ज्यादा रुचि नहीं होती थी, ये सीधा खाने में विश्वास रखते थे, कौन लड़ेगा और मेहनत करेगा मारेगा सीधा खा जाओ, शत्रु पक्ष का काम भी तमाम हो जाएगा भूत और जो आपकी शुदा है वो भी शांत हो जाएगी। तो दोनों कार्य एक साथ करते थे। तो इसके पश्चात क्या हुआ युद्ध खत्म हुआ तो युद्ध के पश्चात विभिन्न देवता भगवान राम के पास आए और वो बड़े ही अपने आप को लाइट फील कर रहे थे क्योंकि रावण के आतंक से चारों तरफ त्राही मची हुई थी। तो जो इंद्र हैं भगवान राम के पास आए, उन्होंने बोला कि आपने जो कार्य किया मैं उससे बहुत प्रसन्न हूं और मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं जाता, तो मैं आप चाहता हूं कि आप कृपया कर मुझसे वर मांगे। भगवान राम जो समस्त वरों को देने वाले हैं, इंद्र उनसे आगे उनकी इच्छा से इस प्रकार से कह रहे हैं। तो भगवान राम ने क्या मांगा, उन्होंने बोला कि जितने भी वानर जिन्होंने अपने प्राण छोड़े हैं इस युद्ध के अंदर वो फिर से पुनः जीवित हो जाए, जितने भी वानर। और दूसरा ये, क्योंकि हम जानते हैं वानर खाने के लिए उनको कुछ उनकी ज्यादा ही रुचि होती है, तो उन्होंने पुनः कहा कि जहां जहां भी वानरों के निवास स्थान है वहां पर फिर से जितने फल है फूल है ये वाले वृक्ष वहां पर लगे हों ताकि उनको किसी प्रकार के खाने में कोई असुविधा ना हो। तो दोनों प्रकार के उन्होंने वरदान मांगे इंद्र से, दोनों के दोनों वानरों के लिए। तो भगवान इतना एक एक जीव का ध्यान रखते हैं। इंद्र ने कहा यद्यपि इस प्रकार का वरदान देना मेरा कठिन है किंतु फिर भी प्रसन्नता पूर्वक आपकी प्रसन्नता के लिए मैं इसे करूंगा। इसके पश्चात आगे चले भारद्वाज मुनि, भारद्वाज मुनि भी इनके इस कार्य से बहुत प्रसन्न थे, तो उन्होंने भी भगवान से कहा कि मैं आपकी कुछ सेवा कर सकता हूं, आप मुझसे कुछ वरदान मांगिए। तो भगवान राम ने फिर वहां पर उसी बात को दोहराया, बोले देखो ये वानर जो है बहुत थके हुए हैं, तो जहां जहां भी मार्ग में जितने भी स्थान है जहां जहां से हम गुजरेंगे आप क्या कीजिए वहां पर फिर से आप वृक्ष लगा दीजिए जहां पर फल और फूल हो और सुंदर सुंदर हवा आप बहाइए, मधुर हवा को आप बहाइए, उसको ऐसे कीजिए ताकि जो युद्ध करने के दौरान ये थक गए हैं पूर्ण से पुनः इसमें क्या इनके अंदर क्या हो प्रेरणा शक्ति का संचार हो। तो फिर से उन्होंने दोनों वरदान मांगे और दोनों के दोनों किसके लिए, वानरों के लिए। तो भगवान अपने किसी भी जीव के प्रति की गई सेवा को कभी भूलते नहीं है और सब कार्य को करने वाले वे स्वयं ही हैं, फिर भी क्या करते हैं वे अपने भक्तों को उनको महिमा मंडित करते हैं, उनकी कीर्ति को फैलाते हैं। भगवद गीता के 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान अर्जुन को यही बात कह रहे हैं, तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्त्व चित्वा शत्रुं भुंक्ष्व राज्यं समृद्धं मय्ये वेते नीता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्ये साचिन। हे अर्जुन उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीत कर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं और ये सभ्य साची तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। तो भगवान क्या कह रहे हैं, भुंक्ष्व आप भोगो। हम सुनते हैं कि एक भक्त जो है उसके लिए पूजा लाभ मान प्रतिष्ठा ये ठीक नहीं है, पर कृष्ण प्रत्येक भक्त को देते हैं, भक्त को छोड़िए अभक्तों को भी देते हैं। केवल क्या है कि भक्त जिस उसको पूजा लाभ मान प्रतिष्ठा उसको मिल रहा होता है उसको पहचान नहीं पाता, उसको लगता है कि अभी ये मिल रहा है ये नहीं है, आगे मुझे मिलेगा शायद ये कुछ और होगा। और भक्ति में जहां वैराग्य साथ साथ चलता है वहां कोई किसी भी स्तर का भक्त क्यों ना हो उसके लिए भी प्रतिष्ठा यश ये चीजें साथ साथ चलती है, उसको अलग से कार्य करने के इनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, अभी तो कुछ स्वभाव ही ऐसा भक्ति की विधि का। तो हमने भक्तों को देखा भगवान किस किस प्रकार से ईश्वरगान करते हैं, उनको कीर्ति देते हैं। तो जो भौतिकतावादी लोग हैं जिनका भगवान या भगवान की भक्ति में सेवा से कोई संबंध नहीं है उनको भी देते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं महात्मा गांधी कितने बड़े समाज सुधारक हुए, या मदर टेरेसा इन्होंने समाज के लिए कितना कुछ किया, क्यों इनका संसार में लोग इनके बारे में सोचते हैं, इनका इतना गुणगान करते हैं, क्यों इनको याद करते हैं, क्यों, कारण क्या, इन्होंने सेल्फ स्वयं के शरीर या स्वयं के विचारों की आवश्यकताओं से बढ़कर दूसरों के विषय में सोचा। तो भगवान को यह बात बहुत प्रिय करती है क्योंकि इस संसार में चाहे कोई भी युग क्यों ना रहो इस प्रकार के व्यक्ति सदैव बहुत दुर्लभ होते हैं जो अपने शरीर अपने विचारों से हटकर दूसरों के कल्याण के लिए भले भौतिक स्तर पर क्यों ना हो वो सोचते हैं। तो भगवान इनका भी यश फैलाते हैं, इनका भी यश इनके लिए इनके भी महिमा को फैलाते हैं और भक्तों की महिमा को भी फैलाते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि यदि भगवान भक्तों का महिमा को भी फैलाते हैं और एक जो सांसारिक दृष्टि में लोग हैं उनकी महिमा को भी फैलाते हैं, दोनों में अंतर क्या है। तो श्रीला प्रभुपाद इस विषय में बताते हैं कि भले ही सांसारिक लोग हो उनकी कीर्ति फैलती हो और भक्तों में कीर्ति फैलती हो पर दोनों की कीर्ति एक समान नहीं होती। जहां भक्तों को जो भी कीर्ति यश प्राप्त होता है वो भगवान की अंतरंगा शक्ति के द्वारा दिया जाता है जो अभक्त होते हैं, असुर होते हैं, उन्हें जो कीर्ति यश प्राप्त होता है भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा दिया जाता है। किंतु क्या है कि ऐसे नहीं है कोई व्यक्ति अगर अंतरंगा शक्ति में हो तो कुछ अलग से दिखेगा या बहिरंगा शक्ति में कुछ अलग से लाइट होगी, नहीं। बल्कि हम ये भी देख सकते हैं जो विभिन्न प्रकार के कल्याण कार्य करते हैं उनके पीछे दुनिया भक्तों की, जो भक्त हैं उनकी संख्या में बहुत अधिक हो सकती है। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी को देखते हैं, हजारों लाखों लोग उनके केवल एक बात कहने पर अपने उन्होंने कपड़ों का त्याग कर दिया। उन्होंने बोला कि हम विदेशियों द्वारा पहना गया कपड़ा नहीं पहनेंगे, सिर्फ उनके एक बात कहने पर। और हो सकता है मैंने भक्त ना दिखाई दे, पर फर्क क्या है कि इनका जो यश होता है, इनकी जो कीर्ति होती है वो काल के द्वारा सीमित होती है और विभिन्न परिस्थितियों के द्वारा वो सीमित होती है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं इस देश में, हम लोग महात्मा गांधी को जानते हैं, मदर टेरेसा को जानते हैं जिन्होंने इतना कुछ किया, पर ऐसे बहुत से समाज सुधारक या जिन्होंने दूसरों की अन्य आवश्यकताओं की, शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करी, अन्य देशों में भी है, हमें नहीं पता चाइना में किन्होंने करा, किंतु उनका यशगान, उनकी महिमा उन तक सीमित है। और जो भक्त हैं उनकी महिमा असीमित होती है। इसलिए प्रत्येक दिन हम गाते हैं गुरु पूजा में, ए यश घोषोक्त त्रिभुवन शिला प्रभुपाद पतित पावन। तो जो भक्त भगवान के लिए अपना सब कुछ करता है, अपना जीवन, अपने प्राण, अपने विचार, प्रत्येक चीज का त्याग करता है, भगवान उसको कैसे भूल सकते हैं। और भगवान इन सबको यश देते हैं और जो अभक्त है उनको भी इतना यश देते हैं। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने अपने विचारों, इस देहात्म बुद्धि का परित्याग करा है दूसरों के लिए। तो प्रश्न उठता है कि भगवान किसको यश नहीं देते? भगवान सभी जीवों को यश देते हैं, चाहे कोई उनकी महिमा को समझे, चाहे कोई उनकी महिमा को ना समझे। और जो ये यश है भगवान की कृपा स्वरूप होता है, कृपा के कारण ही भगवान जो है प्रत्येक जीव को यश देते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि कितनी सारी हम योनियां सुनते हैं, कुल मिला के 84 प्रकार की योनियां हैं, तो उसमें से कितने कम लोग हैं जिनको ये मनुष्य जीवन प्राप्त होता है? क्या कभी हमने सुना है कि मैं इतना भाग्यशाली हूं, मैं 80 लाख स्पीचेस को पार करके यहां आ गया हूं, क्या ये यश नहीं है? दरअसल यश की परिभाषा क्या है कि कुछ ऐसा है जिसके कारण आप अपनी श्रेष्ठता दूसरों पर स्थापित करते हैं, कुछ ऐसा है जिसके कारण लोग आपको अन्यों से बेहतर समझते हैं। तो क्या मैं 80 लाख योनियों से बेहतर नहीं हूं? उसके पश्चात चलो हमें मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ। कितने हम जीव देखते हैं, कितने मनुष्यों को देखते हैं जिनके पास रहने को घर नहीं है, खाने को नहीं है, लोग सर्दी से मरते हैं, गर्मी से मरते हैं, पर क्या मेरे साथ वो स्थिति है? तो क्या भगवान ने मुझे यश नहीं दिया? मेरे साथ तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि मेरे को बहुत सर्दी लगी हो, मेरे पास कंबल ओढ़ने को नहीं है, बहुत भूख लगी हो, खाने को नहीं है, तो क्या भगवान ने हमें यश नहीं दिया? इस प्रकार से देखते हैं कितने लोग हैं जिनको मनुष्य का शरीर प्राप्त है किंतु जिनके अंग विकृत हैं, किसी की आंख नहीं है, किसी की हाथ नहीं है, तो क्या हम किस बात के लिए भगवान का धन्यवाद देते हैं कि कृष्ण आपने मुझे यश दिया, मेरा पूरा बॉडी जो है बिल्कुल कंप्लीट है? और कितनों के अंग है जो पूर्ण से शरीर में अंग तो है लेकिन ठीक से काम नहीं करते? तो भगवान ने हमें पूरा अंग दिया है और शरीर के सारे अंग दिए, सारे ठीक से फंक्शनिंग कर रहे हैं, तो क्या कभी हम इस बात के लिए भगवान को गुणगान करते हैं कि कृष्ण आपने मेरे को इतना यशस्वी बनाया? क्योंकि कितने जीवों को देखता हूं उनके पास ये भी नहीं है। उसके बाद भौतिक रूप से देखें, हम देखते हैं कि कृष्ण हमारे में कितने सारे इंजीनियर्स डॉक्टर जुड़ते हैं, पर उनसे पूछें कि अगर आप IIT की जब परीक्षा कर रहे थे तो आपने उसको उत्तीर्ण किया, उसको पास किया, कितने लोगों को यह अवसर मिलता है? कितने हजारों लाखों बच्चे इसकी तैयारी करते हैं, कितने कम लोग पास करते हैं? तो क्या आपको ये यश नहीं मिला? फर्क क्या होता है? असुर लोग ये सोचते हैं, जो लोग भगवान और उनकी कृपा पर विश्वास नहीं है तो लगता है हमने अपने मेहनत से किया, अपनी बुद्धि से किया है, किंतु भक्त सोचता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं। और केवल ये उसका एक भावनात्मक चिंतन या कल्पना प्रसूत विचार नहीं होता कि चलो बस हाँ अच्छा सोचना चाहिए, ठीक है अपने को विनम्र मानना चाहिए, नहीं, हम कुछ भी कर रहे हैं शरीर के माध्यम से कर रहे हैं। शरीर में हमारा ग्रॉस बॉडी है, सटल बॉडी है, तो ग्रॉस बॉडी 5 तत्वों से बना हुआ है। वो 5 तत्व किन्होंने दिए? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, भगवान ने दिया। और आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं उसके लिए आपको बुद्धि चाहिए, क्षमता चाहिए, तो भगवान गीता में बताते हैं मद समृद्धि ज्ञान अपोमनम च, ये कौन दे रहा है? तो जो भक्त होता है भगवान के प्रति अपनी विनम्रता को जब स्वीकार करता है तो भगवत तत्व से, भगवान के ज्ञान से पूर्ण रूप से विज्ञ होकर ऐसा करता है। हम कृष्ण भावनामृत में देखते हैं कि जब भक्त आते हैं तो वो प्रचार करते हैं और लोग बाहर जाते हैं उनको भी प्रचार करते हैं तो लोग कितना उनका सम्मान करते हैं, क्या इस कारण से मेरे पास बहुत योग्यता है या मेरे पास बहुत अच्छे गुण हैं? नहीं, कारण क्या है कि मैं भगवान का भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूं। पर यहाँ भगवान इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि मैं इस भक्त को यश उतना दूंगा जितना संभाल सके, जिससे इसकी भक्ति में बाधा ना आए। पर जब इस बात का इस्तेमाल किया जाता है कि भक्तों को पूजा मान या लाभ प्रतिष्ठा नहीं मिलता या नहीं मिल रहा, तो ऐसा नहीं है। वास्तव में क्या होता है कि भक्त जो उनको मिल रहा है उसको पहचान नहीं पाते, उस कारण से ऐसा होता है। क्योंकि भगवान प्रत्येक चीज को देते हैं और प्रत्येक परिस्थिति में देते हैं। तो अगर हम पहचान लेंगे तो देखिए मुझे कितना भगवान कीर्ति मुझे दे रहे हैं, मेरे अंदर कोई भी गुण नहीं है, समस्त विषय वासनाएं मेरे अंदर, फिर भी भगवान किस प्रकार से मेरे साथ व्यवहार करते हैं। तो ये भगवान की महिमा है, जिसे बता रहा हूं कि अगला जो जो भक्तों का जो भगवान महिमा करते हैं उनकी जो कीर्ति होती है वो अविनाशी होती है। उदाहरण के लिए वृत्तासुर की कथा, जिस वृत्तासुर की कथा को हम भागवतम के छठे स्कंध में पढ़ते हैं, यही वृत्तासुर की कथा भगवान राम लक्ष्मण को बता रहे हैं। तो यहां भक्त और जो भक्त नहीं है उनकी कीर्ति में अंतर है। और भक्त भी जो है वो भी कीर्ति के लिए प्रयास करते हैं, ऐसे नहीं है कि कोई भक्त कीर्ति के लिए प्रयास नहीं करता, लेकिन भक्त क्या चाहते हैं, सर्वश्रेष्ठ कीर्ति। भगवान चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के संवाद में देखते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद से पूछा कि सर्वश्रेष्ठ कीर्ति क्या है, तो रामानंद राय ने उत्तर दिया कि आपके भक्त के रूप में आपका भक्त बनना यही सबसे बड़ी सर्वश्रेष्ठ कीर्ति है। तो जीवात्मा का एक सहगामी गुण है कीर्ति, क्योंकि भगवान का अंश है, भगवान परम यशस्वी है, तो जीवात्मा के अंदर भी ये गुण है। पर उस कीर्ति उसकी आवा तभी जुड़ती है जो भगवान के साथ में होता है, अन्यथा ये जो जो बाहर हम लोग देखते हैं जिनकी कीर्ति है और भक्तों की जो कीर्ति है वो देखने में जैसी लग सकती है, जैसे कि एक ज्वेलरी होती है, एक सोना होता है, एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, पर समय के साथ साथ क्या देखते हैं, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है उसका प्रभाव कम हो जाता है, किंतु सोना जो होता है उसकी उसकी प्रभाव उसकी आभा वो समान रहती है और बढ़ती है। तो यहां हमें भक्तों और अभक्तों की कीर्ति को विशेष रूप से समझना चाहिए। और इसके पश्चात श्लोक संख्या 46 में दूसरे भाग में क्या हुआ कि जब शिवजी विष्मान कर रहे थे तो उस समय उनके हाथ से विष गिरा, इसे छितर कर क्या हुआ, बिच्छू सर्प विषैली औषधियां अन्य पशु जिनका दंश विषैला होता है पी गए। तो यहां पर बिच्छुओं सर्प और विषैली औषधियों के बारे में बताया गया है कि इनका जो स्वभाव होता है विशेष रूप से आश्रय होता है। कोई प्रश्न ही पूछ सकता है कि आप कहते हैं अगर भगवान सर्व दयालु हैं तो क्यों भगवान इस प्रकार की योनियों को बनाते हैं, क्योंकि ये तो हर जीव को कष्ट ही देती हैं। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि इस प्रकार की योनियों को बनाना, इस प्रकार के योनियों में जीवों को रखना भगवान की एक और अहेतु की कृपा है, जिसके कारण उनकी जो आश्रय प्रवृत्तियां हैं वे कम हो और इवोल्यूशनरी प्रोसेस में वो फिर से आगे बढ़े। प्रभुपाद बताते हैं कि जो मच्छर होते हैं विशेष रूप से ईर्ष्यालु व्यक्तियों के समान है। भगवान कहते हैं कि इन द फॉरेस्ट ऑफ मटेरियल लाइफ एवरीवन इज एनवियस लाइक मॉस्किटोस, क्योंकि मॉस्किटो का मच्छर का क्या काम है, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए दूसरों को केवल कष्ट देना। वेल आपके वह आता है रक्त पीता है और फिर चला जाता है। तो इसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति जीवन का परम लक्ष्य नहीं जानता, उसका क्या कारण है कि आप मेरी इच्छाओं की पूर्ति कीजिए और आपको कष्ट हो रहा है या आपको सुख मिल रहा है कोई मतलब नहीं। तो मच्छरों के विषय में श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। इसी प्रकार से हम देखते हैं स्कॉर्पियंस, स्कॉर्पियंस बिच्छू वही अत्यंत विषैले जीव होते हैं और उनका कार्य क्या होता है, डंक मारना, कष्ट पहुंचाना, और इतने विषैले होते हैं कि इससे कई बार मनुष्य होते हैं उनके कई बार प्राण तक चले जाते हैं। और डॉग कुत्तों के बारे में बताया गया है, कुत्ते होते हैं विशेष रूप से प्रभाव आते हैं ऐसे जीव है जो अपने ही योनि से घृणा करते हैं, अपने ही जाति के भाइयों से घृणा करते हैं, इतने भयंकर ईर्ष्यालु इनके अंदर ईर्ष्या भरी होती है। सांप, सांप के विषय में हमारे भागवतम में हमारे ग्रंथों में बहुत कुछ बताया गया है, बताया गया है कि एक सांप जो है उसको आप किसी प्रकार से आप कंट्रोल कर सकते हैं मंत्र औषधियों के सहारे, लेकिन एक ईर्ष्यालु व्यक्ति है उसे कंट्रोल नहीं कर सकते आप। एक्चुअली पादरी भवन में इस बारे में बताया कि ये लिखा हुआ है किंतु उन्होंने इसको प्रत्यक्ष रूप से देखा। एक बार वो बंगाल में गए होते, उन्होंने देखा कि खेती कुछ किसान खेती कर रहे हैं तो एक किसान को सांप ने काट लिया। उन्होंने फिर अपनी भाषा में एक दूसरे को बुलाया और जो व्यक्ति जानता था इस प्रकार मंत्रों से उपचार करना वह पुण्य जो है उस व्यक्ति के पास पहुंच गया, उसको ठीक कर दिया। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, इतने दूर दराज के गांव में चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती, तो अगर वो डॉक्टर का इंतजार करेंगे तब तक उस व्यक्ति की वो मारा भी जा सकता है। तो इस प्रकार से इन मंत्रों के सहारे जो है उनकी चिकित्सा की जाती है। विशेष रूप से यहाँ जब सांपों की बात आ रही है तो कालियों के बारे में बताना बहुत जरूरी हो जाता है। काली एक ईर्ष्यालु व्यक्ति का स्वभाव क्या होता है, उसकी योजनाएं क्या होती हैं, किस प्रकार से वो दूसरों को कष्ट देता है, तो कालिया के चरित्र में हमें दिखाई पड़ता है। बताया जाता है कि नागालैंड नामक एक आइलैंड में जो सांपों का निवास स्थान है वहां पे सांप रहा करते थे और गरुड़ वहां पर हमेशा सर्प खाने के लिए जाया करते थे। पर क्या होता था कि गरुड़ को जितनी भूख होती थी उतना खाते थे और कुछ जो बाकी सांप होते थे उनका एनकाउंटर वो ऐसे ही कर दिया करते थे। तो सब समाज जो है इससे बड़ा भयभीत हो चुका, बड़ा भयभीत हो गया कि अननेसेसरी इनका ये मैसिव अटैक कर रहे हैं और इतने सांपों को मार रहे हैं। तो वो ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी ने एक सेटलमेंट करा दिया सांपों के बीच और गरुड़ों के बीच कि आप जितने भी जो भी आप सांप हैं आप निश्चित कर दीजिए और निश्चित संख्या में ये सांप अमावस्या के दिन गरुड़ को मिल जाया करेंगे। तो सांपों के मुखिया वासुकी थे, उन्होंने इस बात को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। लेकिन ये जो कालिया था ये बड़ा प्रमुख सर था, इसकी भी वहां पे हैसियत थी, इसको लगा कि मैं भी कुछ हूं। तो कुछ समय शुरू से ये सोच रहा था मैं कुछ करूंगा, लेकिन जब उसको ऐसा पता चला कुछ अमावस्या तक तो ये किश्त मिलती रही गरुड़ देवी को, लेकिन अचानक इसने क्या किया कि वो किश्त जो है वो खुद खाने लग गया। अमावस्या के दिन जो सांप आते थे ये खुद खाने लग गया। उसको विश्वास हो गया कि मेरा जो जहर है, मेरी जो शक्ति है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और इसने अब ये खुलकर सामने आ गया और इसने किसी प्रकार के नियम की कुछ ब्रह्मा जी ने कहा है या जो हमारे मुखिया है वसु की वो कुछ बता रहे हैं, तो उसने किसी प्रकार की परवाह नहीं करी। लेकिन ताक्षर्य के पुत्र हैं गरुड़देव, जब उनको पता लगा तो उन्होंने ठान लिया कि अब की बार मैं इसको सबक सिखा कर रहूंगा। तो उन्होंने इससे युद्ध प्रारंभ किया। इसको पूरा विश्वास था कालिया को कि मैं अपने पराक्रम से इनको हरा दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फिर जब युद्ध में इनकी पराजय होने लगी तो ये फिर क्या करा, ये भागकर कहाँ चले गए, यमुना नदी में चले गए। तो इनको पहले से इनको पता था कि अगर मेरी पराजय होगी, अगर मुझे कष्ट आएंगे तो मैं क्या करूंगा बचने के लिए, यमुना धाम में जाऊंगा। छोकरी मुनि वाला स्टाइल इन्होंने पहले से पता कर रखा था। तो एक ईर्ष्यालु व्यक्ति जो अहंकार और ईर्ष्यावश होता है किस प्रकार से कितनी तैयारी करके रखता है बिना भगवान की कृपा पर डिपेंड हुए, ये हमें कालिया के चरित्र से पता लगता है। किंतु इसको यह नहीं पता था कि कभी वहां पर भगवान कृष्ण आएंगे और उसको कालिया घर से वहां से बाहर मार के बाहर भगा देंगे। तो इसके पश्चात भगवान कृष्ण और कालिया में युद्ध प्रारंभ हुआ। तो बताया जाता है कालिया के 101 फन थे और भगवान श्री कृष्ण ने 101 फनों को पूर्ण रूप से नियंत्रित किया हुआ था और अपने पाप प्रहार से क्या हो रहा था कि इसको अत्यंत कष्ट हो रहा था। देखने में लगता है कि भगवान इतने कोमल हैं और इस कालिया के इतने बड़े बड़े फन हैं, तो कालिया के ऊपर क्या असर हो रहा था। तो यह भगवान की अचिंत्य शक्ति है कि उनका जो एक एक प्रहार था पाप का वो वज्र से भी अधिक कठोर लग रहा था। तो बार बार ये प्रयास करता था कि किसी प्रकार से भगवान को गिरा दूं, कुछ कर दूं। तो फिर इसने अत्यंत प्रयास किया, उस प्रयास में सबसे पहले क्या किया, इसने जहरीली अग्नि निकाली अपने मुंह से। वो जहरीली अग्नि निकाली किंतु युद्ध में लड़ने के पश्चात क्या हुआ, उसकी वो जहरीली अग्नि फिर से खत्म हो गई सारी। फिर इसने विष निकालना शुरू किया और विष का भी स्टॉक सारा खत्म हो गया। उसके पश्चात क्या किया, अपना स्टूल पास करने लगा और दूसरे प्रकार से आक्रमण करने लगा। तो भगवान ने सारा का सारा जितना इसका विष था उस सारे को बाहर निकाल लिया। और फिर क्या हुआ, लड़ते लड़ते इस कालिया को इस बात की अनुभूति हो गई कि ये कृष्ण जो है ये परम भगवान है और अब मैं इनकी शरण में जाऊंगा। तो ये रियलाइजेशन देने वाले कौन है, ऐसी अवस्था में जब व्यक्ति कुछ सोच भी नहीं सकता, शत्रु पक्ष के द्वारा पराजित है, ये अनुभूति किसने दी, ये कृष्ण ने। तो हम देखते हैं कि मैं कई बार इस विषय में सोचता हूं कि भगवान ने उस पर अपने पाप का प्रहार किया, उसको हर प्रहार वज्र की तरह लग रहा था और धीरे धीरे देखते उसकी सारी विषैली अग्नि विष और जितना रक्त था सारे असुरी तत्व निकल गए और उसकी चेतना पूर्ण रूप से शुद्ध हो गई और भगवान की वो शरण में गया। तो हमें विशेष रूप से जब जप करते हैं तो बिल्कुल मन नहीं लगता कई बार जप को करने में, और कुछ अगर हमें तपस्या करनी पड़े, कुछ उपवास रखना पड़े तो बड़ी कठिनाई होती है, कैसे रखें, क्या करें, कैसे न करें। तो और जब भी कोई जीव हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, बताया जाता है कि भगवान कृष्ण है, राधा रानी, उसकी जीवा पर नाचते हैं, पर हमारे साथ ऐसी अनुभूति नहीं होती। कारण क्या है कि विभिन्न प्रकार के जो विष हैं हमारे अंदर अभी भरे हुए हैं, चाहे काम के रूप में, क्रोध के रूप में हो, लोभ के रूप में, ईर्ष्या, मन, मात्सर्य। किंतु हम हरे कृष्ण महामंत्र का करेंगे, जप करेंगे जो भगवान से अभिन्न है, तो धीरे धीरे कालिया की तरह ये विष भी हमारे अंदर से निकलेंगे और फिर हमारी चेतना पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगी और फिर हमें यही हरे कृष्ण महामंत्र ध्यानपूर्वक सुनाई देगा और फिर हमारे भी वही अनुभूति होगी जो आचार्य बता रहे हैं। जैसे रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान का जो नाम है इसको बोलने के लिए मेरी जिह्वा बहुत कम है, इसको सुनने के लिए मेरे दो कान बहुत कम है, तो काश मेरे हजारों कान हो, मेरी लाखों जिह्वाएं हो, फिर हमारी भी यही अनुभूति होगी और फिर बार बार हरे कृष्ण महामंत्र को गाना चाहेंगे, दूसरों को बताना चाहेंगे। शिला प्रभुपाद इस बात को भली भांति जानते हैं, तभी हम देखते हैं भागवतम में वो हर जगह, भागवत गीता में, किसी भी वैदिक ग्रंथ में ले, पूरा पूरा इसको बताते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र पूरा लिखते हैं। तो जो अनुवादक है जिन्होंने हिंदी में अनुवाद किया उनको कोई बहुत अच्छा नहीं लगता था बार बार हरे कृष्ण महामंत्र को पूरा लिखो, पूरा ये करो, तो कई बार लिखते थे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, तो बहुत बार। लेकिन प्रभुपाद इस हरे कृष्ण महामंत्र, इस श्रवण की विधि का महत्व जानते थे, तो उन्होंने जो है बार बार इस पर महत्व दिया। और अगर हम भी उनके बताए नियमों का पालन करेंगे, श्रवण की विधि का पालन करेंगे, तो हमारी भी चेतना शुद्ध होगी और हमें भी वही अनुभूति प्राप्त होगी जो हमारे आचार्यों को प्राप्त हुई है। तो मैं यहीं पर कहकर इस कथा को विराम दूंगा और मुझसे जो गलतियां हुई, त्रुटियां हुई, कृपया कर मुझे क्षमा करें। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु शिला प्रभुपाद की जय। किसी का कोई अगर प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं का। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद हरे हरे बोल।